તારીખ 13/5/1992 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બુલ નંબર 276 277 અને 278 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 121
निश्चयाभास के निषेध के लिए जब ऐसा कहने में आता है कि शून्य का भाव तो गणधर को भी आता है, अध्ययन का भाव तो मुनियों को भी आता है इत्यादि कथन आते हैं, तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है और हम ऐसा व्यवहार में नहीं रहेंगे तो निश्चयाभास हो जाने का डर अर्थात भय भी लगता है। इससे निश्चय पर जोर नहीं दे सकता है, वो डर के कारण से और व्यवहार में वो खींच जाता है और उसको ऐसे शुभ राग में सुनने का पढ़ने का अध्ययन करने का राग में आदर भाव रह जाता है। तो क्या बात चली है इधर के व्यवहाराभासी जीव के परिणाम कैसे होते हैं, व्यवहाराभासी जीव के परिणाम कैसे होते हैं इसका वर्णन किया है। तो उसको निश्चयाभास को जो दवाई दिया, निश्चयाभासी को जो दवाई दिया वो दवाई व्यवहाराभासी को लागू नहीं पड़ती, उसकी दवा दूसरी है। शास्त्र है वो मेडिकल स्टोर है, उसमें बहुत सी दवाएं हैं। कितनी? बहुत सी दवाई हैं। अगर एक मरीज एक दर्दी सभी दवा पी लें तो क्या हुए?
मर
जाए। इसलिए शास्त्र पढ़ने वाले को उतना ही प्रयोजन है कि मेरी दवा कौन सी है, क्योंकि शास्त्र जिसने रचा ऐसे जो आचार्य महाराज हैं मुनिराज हैं वो तो सारे शासन के अनेक विविध प्रकार के जीवों को लक्ष्य में लेकर के सबों की दवाई बताएंगे कि किसी को ऐसा रोग हो तो वो लेना, ऐसा रोग हो तो वो लेना। जीव बहुधा क्या करता है कि अपनी रुचि का पोषण कर लेता है, गलत रुचि है तो गलत रुचि का पोषण शास्त्र के निमित्त से वो कर लेता है। देखो मैं कहता हूं ऐसा शास्त्र में आता है, शास्त्र में ऐसा बताया है तो शास्त्र में आएगा कि सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है, छदमस्त है तो विकीर्षण करके वाणी सुनने को वो उसको विकल्प रहता है और मुनि है वो भी शास्त्र अध्ययन का विकल्प उनको रहता है। तो शास्त्र में तो वो बात आई और शास्त्र में वो बात भी आई कि मुनिराज ये कहते हैं कि शास्त्र में जाने वाली हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी है, पर घर को जाती है, हमारा आत्मा ही आगम है, हमारा आत्मा ही देव है, हमारा आत्मा ही गुरु है, वहां नहीं रह करके शास्त्र में क्यों गई, दोनों बात शास्त्र में आएगी, क्या करेंगे, परस्पर विरुद्ध बात है वो। तो जहां जहां जो बात कहिए, जहां जहां जे जे योग्य छे कहां समझू ते त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जन, यथार्थता ऐसे होती है। हर तरवार नी सोहली डोली चौदमा दिन तने चरण से मांगवा, जरा का आगे पीछे जाए, या तो व्यवहाराभास हो जाए या तो निश्चयाभास हो जाए या तो प्रमाणाभास हो जाए। ये मार्ग है वो सूक्ष्म है और यथार्थता बिना मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यथार्थता क्या चीज है और कैसे यथार्थता की उपलब्धि है मनुष्य की भूमिका में, ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। और ये बात नहीं समझे तो कहीं ना कहीं गोथा खाने वाला नहीं, ये बात हो जाएगी। पहला तो दवा तो हाथ लिया, पची परेशानी बात से दवा खोटी लिया हूँ करे, दवा क्या बदी लेवाई छे। एक उपदेश का एक कोई एक प्रकार उपदेश का सभी जीवों को लागू नहीं हो सकता और उपदेश का सभी प्रकार एक जीव को लागू नहीं हो सकता है। तो अब शास्त्र अध्ययन कैसे करना या सुनना क्या, कि अपने प्रयोजन की बात है उसको टच करना, दूसरों को जानकारी के खाते में डाल देना, उसका हमारे प्रयोजन नहीं है। जिसका हमें आदर करना है, अमल करना है, वो तो एक हमारे काम की कौन सी चीज है, उसका हमें ध्यान रहना चाहिए। वही बात कह रहा था कि मुमुक्षुओं को ऐसी शक्ति प्राय नहीं होने से, मुमुक्षु अनंत बार मुमुक्षु हुआ फिर भी सफल नहीं हुआ, विफल हुआ। इसी कारण से सत्पुरुषों ने यह कहा कि तू सत्पुरुष के संग में रहे, क्या अंडर स्ट्रिक मेडिकल सुपरविजन मरीज को रखा जाए तो फिर कोई उसको उपाधि करने की जरूरत नहीं। इसलिए सत्पुरुष और सत्संग की बात रूपालु देव ने अधिक वजन से की है, ज्यादा जोर दिया है। यही कारण है कि मुमुक्षु को प्राय तो यही नहीं पता चलता कि मुझे कौन सी बात की जरूरत है, कौन सी दवा मुझे लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, आगे पीछे परहेज क्या पालनी है, ये सब सो पहलू है। वो तो खुद मरीज को दर्दी को पता होता नहीं है, वो तो डॉक्टर को ही पता होता है। इसलिए कहते हैं कि तुम कोई अच्छे सतपुरुष के चरण में जाकर के आत्मशुद्धि के मार्ग में आने का प्रयास करना, अकेला अकेला अपने हाथ से करना नहीं। गुरु ने सदनी हाँ ये तो है ही, ये बात भी है कि सही गुरु को, सही सत्पुरुष को, सच्चे सत्पुरुष को, अनुभवी पुरुष को ढूंढना है, गलत जगह पे फंसना नहीं है। न बातों में आना है शास्त्र ज्ञान की, न त्याग बाह्य त्याग के चारित्र के फंदे में भी फंसना है। ये दोनों परिस्थिति में मोक्ष मार्ग को अनजान लोग हो सकता है, तो जो मोक्ष मार्ग को जानता ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये बात भी एक जटिल प्रश्न है, क्या ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सही सत्पुरुष को जीव नहीं ढूंढता है, कभी किसी के त्याग पर उसको आकर्षण होता है, महिमा आ जाती है, कभी किसी के शास्त्र ज्ञान और वाणी ऑरेटरी जिसको कहते हैं, रजनीश को क्या था ऑरेटरी, ऑरेटरी में फंसता है तो फिर भाव चला जाता है, भाव बिगड़ जाता है, ये बात तो है ही। इसलिए सही सत्पुरुष को, अनुभवी पुरुष को मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ है सत्पुरुष को ढूंढना है, अनजान है उसके पास से हमें कोई सीखना नहीं, समझना नहीं, उसका संग भी हमें करना नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये आत्मा देवा वाला ने तो कर से बीजू कहीं दे तो ऐसे ना पड़ से क्या है कि जो जिसको वितरागता उपासमान नहीं है, जो उपासना नहीं करते वितरागता की, वो अनादि से निश्चय रूप से राग की उपासना करता ही है और अपनी उपासना के वशात वो राग उपासने का उपदेश दिए बिना रहेगा। तुम ऐसा राग करो, ऐसा राग करो, तो शुभ राग को छोड़ो और शुभ राग को करो। ये राग की कथा है कि राग काम भोग बंधन की कथा है। क्या है शुभ राग से जो फल मिलेगा पुण्य का, उसमें क्या होगा काम भोग, उससे क्या होगा नया बंधन होगा। श्रुत परिचित अनुभूत सर्व को काम भोग बंधन की कथा, अज्ञानी गुरु के पास से काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, पर से जुदा एकत्व भिन्न आत्मा की कथा हमने कभी सुनी वितराग स्वरूप ही है। वो कथा सुलभ नहीं है क्योंकि ज्ञानी कोई होते हैं बहुत कम होते हैं। तो जिसको अकेला आत्मा ही चाहिए और जीवन में एक आत्महित सिवा जीवन का कोई ध्येय जिसको नहीं है, क्या संपत्ति बढ़ाना, समाज का, परिवार का, सबका संबंध बढ़ाना, मान सम्मान से समाज में हमारा स्टेटस रखना, दो ही बात होती है लोभ और मान। ये जहाँ तक जीवन का ध्येय है को संसार का दी है, अनादि से है जीव को। ध्येय बदल करके सिर्फ आत्म कल्याण का मात्र मोक्ष विलास, ये होगा तभी गाड़ी सही लाइन पर आएगी, तभी यथार्थता आएगी परिणमन में और तभी ज्ञानी की पहचान हो सकती है। वरना तो अज्ञानी को ज्ञानी मान करके अनुसरण करने लगता है जीव। आरंभ समारंभ ऐसा है, मोक्ष मार्ग थोड़ा व्यवस्थित है, मोक्ष मार्ग है वो व्यवस्थित है। तो मुमुक्षु की भूमिका में आरंभ समारंभ शायद नहीं छुपे, लेकिन उसका रस तो छूट जाना चाहिए। हैं? हाँ, वो क्रमशः चला जाएगा, लेकिन रस तो छोड़े नहीं और त्याग कर दे क्या होगा ये खतरा हो जाएगा। तो क्रम यहाँ से है, छोड़ने का क्रम रस से है, पर पदार्थ से नहीं। पर पदार्थ का छूटना ये तो फल है, रस छूटने के बाद उसका नतीजा आता है वो बात है। तो ये बात है, कभी तो ज्ञानियों को ऐसा होता है। श्रीमद रायचंद्र वो व्यापार छोड़ने को चाहते थे, क्या हुआ 24 उम्र के साल में सम्यक दर्शन हुआ। 4 साल से वो व्यापार में लगे हुए थे, वैराग्य तो मनुष्य की भूमिका में बहुत था, 18 साल से वैराग्य बढ़ गया था, अपूर्व वैराग आयो, अपूर्व धार पद में लिखा है ना, तो अपूर्व आया है। फिर भी व्यापार में प्रवेश हुआ, शादी भी किया, क्योंकि 18 साल में शादी नहीं किया था, 20 साल की उम्र में शादी किया, 19 साल की उम्र व्यापार भी हुआ, लेकिन वैराग्य बढ़ा, क्या हुआ अंतर वैराग्य बढ़ा, बाहर में आरंभ परिग्रह बढ़ा। अरे ये क्या हो गया, मैं तो आरंभ परिग्रह से छूटने वाला, ये क्या हो गया, बहुत छटपटाने लगे। तो फिर 5 साल के बाद नंबर आया, क्या 5 साल लग गया, और 5 साल लग गया, 29 के साल में अपने भागीदार को बोल दिया कि मुझे अभी कारोबार में रहना नहीं है, मेरा हिस्सा निकाल दो, तुम लोगों धंधा अच्छा चलता है, तुमको जैसा करना है सब करो, मैं तो अभी ये बोझा उठाने के लायक नहीं रहा। परिस्थिति का दबाव नीचे भी रहना तो पड़ता है ना, तो बार बार आप बाह्य दृष्टि से कैसे मानेगा। देखिए ये तो पहला साधारण आर्थिक स्थिति वाले थे, अभी तो लाखों पति हो गए, तो उसका वैराग्य क्या बढ़ा, वैराग्य बढ़ना दिखने में नहीं आता। तो ये बात कोई दूसरी नजर से देखने की है, बाह्य दृष्टि से सिर्फ देखने की। पूर्व कर्म तो आएगा तो आएगा, उसमें फेरफार करने का इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र का भी अधिकार नहीं है। ये बात है, सुमंदर भगवान और ऋषभदेव भगवान लाखों पूर्व तक गृहस्थाश्रम में क्यों रहे, जन्म से शायद सम्यक दृष्टि, तीन ज्ञान के तो धनी थे क्या, कितने तीन ज्ञान के तो धनी थे, तो मुनि दशा में आते ही चतुर्थ मनोप्रयोग ज्ञान की उत्पत्ति उनको बुझाती है। फिर भी मुनि दशा में, मुनि दशा में तो राग द्वेष के तो मुनि दशा कहवाई नहीं, मुनि दशा से नहीं कहवाई, राग द्वेष वाला नहीं कहवाई, वो छठा सातवां भूमि स्थान में उत्पन्न होने वाला एक ज्ञान है, सभी को नहीं उत्पन्न होता, किसी को होता है किसी को नहीं होता। यहाँ क्या बात है कि व्यवहाराभासी अवलंबन लेता है, किसका अवलंबन लेता है, महापुरुष का अवलंबन लेता है। किस प्रकार, तो देखो गंधर्व देव को भी दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आता है, हमको आवे इसमें क्या, हम तो भी मुक्त है, हमको तो ऐसा राग होवे ही, लेकिन गंधर्व देव को निषेध होता है साथ साथ, तुम्हारी समझी हुई बात अधूरी है, तुमको भी राग आवे उसका उतना वांधा नहीं है, लेकिन जो राग आता है उसका अनुमोदन होता है उसका पूरा वांधा है, उसको भी तुमको भी निषेध आना चाहिए। ये बात है, यहाँ तो व्यवहार वगैरहवासी कैसे भूलता है, वो बात चलती है कि जो शुभ क्रिया में लगता है, अनेक प्रकार की बाह्य साधन जो है, पूजा भक्ति स्वाध्याय दान त्याग वैराग यात्रा जप तप आदि में जो लगता है, और उसका जिसको पक्ष है, इस शुभ राग का जिसको पक्ष है, वो अपने पक्ष की पुष्टि करता है, कैसे पुष्टि करता है, ये शास्त्र कहते हैं, तो उसका कभी हित होने वाला नहीं, वो डूबेगा। ये बात चलती है, पर उसको डर भी रहता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं निश्चय बातें हो जाऊंगा, ये सब शुभ भाव और क्रिया छोड़ दूंगा तो निश्चय बातें हो जाऊंगा, इसलिए निश्चय का विषय उसको समझने में आता है तो भी जोर नहीं देता, जोर व्यवहार पर देता है, निश्चय पर नहीं देता। मूल तो मूल पकड़ो तो थे पी, अवलोकन तो यथार्थ अवलोकन तो ध्येय बांध्या पी थे, ध्येय तो बांधे नहीं, ध्येय बदले नहीं, संसार नु ध्येय बदले नहीं जी, अरे बाकी पी लागी पड़े बाह्य क्रिया में, तो एने अनेक प्रकार ना शुभ भाव अने शुभ योग की क्रिया होने पर भी उनका आत्मकल्याण कभी होता है। वो संसार अर्थ होती है सब, किससे होती है? संसार अर्थ, उसका फल संसार है, उसका फल मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष का ध्येय ही नहीं है उसको, मोक्ष कहाँ से आएगा? ये 236 हो, 237, मैं ऐसा पदार्थ हूं कि मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। मैं ऐसा पदार्थ हूं कि मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। फिर भाई किस विषय का? सम्यक दृष्टि निर्भय है, सप्तभत भय रही, सप्त मैंने सर्व भय, सप्त में सब आ जाता है। क्या कारण है इसका? कि भय नाम का जो परिणाम है उसका प्रवेश शुद्धात्मा में नहीं होता। जिसको शुद्धात्मा का ज्ञान है उनको अच्छी तरह मालूम है कि भय प्रकृति के जो परिणाम होता है उसका प्रवेश ही मेरे में नहीं है, इसलिए भय मुझे नहीं है। सतत अपने आत्मा को अनुभव करने वाला है, सततम विंदति, सहज स्वयं सततम विंदति, अपने आत्मा को नायक मूर्ति को धारावाही रूप से अनुभव करने वाला ज्ञानी, उसको भय का प्रवेश अपने आत्मा में देखने में नहीं आता। चारित्रमों का कुछ भय होता है, वो अपने से भिन्न जानता है पर साथ ही अपना अव्याबाध स्वरूप को संभालता है, तो भाई उसको भयान्वित कर देता नहीं। हमारे हम शांति भाई थे ना, चैतन्य स्वरूप शांति भाई थे ना, एक बहुत अच्छी बात करते थे कि सम्यक दृष्टि है वो दुकान को ताला लगा के घर जाता है या खुद इधर के घर जाता है, तिजोरी को ताला लगाता है या खुली रख देता है, तो उसको चोरी का लूट का भय हुआ कि नहीं हुआ? ये चारित्र मौका पाया है। क्या चारित्रमों का? ताला लगाया फिर भी दुकान टूट सकती है, चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, तोड़ देवे ताला को फिर भी उसको इतना दुख होगा? जितना मिथ्या दृष्टि को होता है उतना दुख दुख उसको होगा नहीं, क्योंकि मेरे में से कुछ गया नहीं। उसका अनुभव क्या बोलता है? मेरा शुद्धात्मा में से कुछ भी गया नहीं, मैं वैसा का वैसा परिपूर्ण, ताला लगाता है। बात को विचार दूसरा है इसके पीछे कि चतुर्थ गुण स्थान में इस प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति होने से कि जो मिथ्या दृष्टि को भी ऐसी ही होती है। क्या बाजार में सम्यक दृष्टि की दुकान हो और मिथ्या दृष्टि सब बहुत है, सब ताला लगाएंगे, सम्यक दृष्टि भी ताला लगाएगा। ऐसी परिस्थिति में इसकी पहचान दुर्लभ हो जाती है। क्या उसकी पहचान दुर्लभ हो जाती है? तो इसलिए एक मुमुक्षु जीव के लिए एक कठिनाई है, कठिनता रही कि वो सम्यक दृष्टि को पहचान सकता। और बाह्य त्याग तो सच्चा मुनि करते हैं और मिथ्या दृष्टि भी करता है, तो वहां भी अगर सम्यक प्रभाव से नहीं पहचानेगा तो मिथ्या दृष्टि त्यागी को भी वो अनुसरण करने लग जाएगा। हैं क्या दृष्टि
अल्लाह
न लगाना पड़े, हाँ शुद्ध आचरण करे, निरतिचार आचरण आचरण करे। क्षमा परीक्षा पर्याय परिणाम અને એ પરિણામ પણ કયા પરિણામ બે જાતના છે, એક અંતરંગ પરિણતિ ઓર એક બાહ્ય પરિણામ। અંતરંગ પરિણતિ કો નહીં સમજે તો અકેલા બાહ્ય પરિણામ છે ભી ઉસકો પહેચાનેગા નહીં। જાસૂસ હોતા હૈ ને, જાસૂસ દેશ મેં વો જાસૂસી હોતી કે નહીં, જાસૂસ હૈ वो दुश्मन के राज में जाएगा तो कैसे रहेगा। जितना भी कानून कायदा है उसमें कोई भी क्षति आ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो पहले पूरा अभ्यास कर लेता है कि इस जगह मुझे रहना है तो घूमने कहीं भी मैं कानून के भंग करने के हिसाब से पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो बराबर पालन करता है इसलिए का सही देश का नागरिक है क्या, देश का कानून नहीं तोड़ता है इसलिए क्या वो देश का नागरिक है क्या, उसको अंतरंग से पहचानना पड़ेगा। ज्ञान में शक्ति है क्या, ज्ञान में ऐसी शक्ति होती है, होती है कि नहीं होती है। जैसे कोई थपका देता है बीते छो तुम ऐसा काम करते हो मर जाओगे, छोड़ो इस प्रकार का काम, फिर ऐसा ही कोई बात बनती है तुमको छोड़ने से बच जाता है तो फिर कहने में आता है कि अच्छा हुआ आपने मुझे कठोर शब्द नहीं किया, कहते तो मैं होता ही नहीं, तो इसके लिए क्या बुरा मानेगा या सही मानेगा। ज्ञान नहीं समझता है उल्टी फिसल्टी परिस्थिति को, ज्ञान नहीं समझता है, बराबर समझता है। अपने विषय में जीव बहुत चतुर है क्या, अपने विषय में जीव बहुत चतुर है, अपने प्रयोजन के विषय में तो जीव की चतुराई संसार में तो बहुत रही। और यहाँ कहता है कि हम क्या करें, ऐसी बात हम कैसे समझे, वहां तो उतनी चतुराई करता है। देखो बाजार में कोई बेचने की बात करता है दलाल, क्या बोलता है, आया क्या क्या अभिप्राय लेकर के आया है, है? पहचानता है कि नहीं पहचानता है, उसको माल बेच देता है क्या, वो खुद लेने को बोलने लगता है, कितनी पहचान आती है वो देखो। पगमाथी पार्क है हमारे बाजार में, जहाँ सौदा बहुत होता हुआ है खास करने वायदाना में, पगमाथी पार्क है ये, आवे तर हम जगह लेवा आयो से, अने वात बेचवा नहीं करे तो समझी जाए कि नक्की लेवा आयो से, तो क्या उल्टू सूटू बधु समझी सकाय छे, आया समझ समझवाने ना पाड़े छे कि केवी रीते समझाय। अपने प्रयोजन में जो विशिक्षण है चतुर है वो सब समझ सब समझता है, नहीं समझे ऐसा कोई बात नहीं है। और ज्ञानी को सम्यक ज्ञान का सूर्य जिसको प्रकट हुआ है ऐसा है, कैसा है ज्ञानी, सम्यक ज्ञान का सूर्य जिसको प्रकट हुआ है ऐसा है, वो भिन्न पड़ता है दूसरों से, वो सूरज है वो छावड़े से छिपाया जाता नहीं, छावड़ा मैंने समझते उतना आता है ना, पॉली चौड़ी टोकरी आती है सब्जी लेने के लिए, एक फीट डेढ़ फीट डायमीटर की टोकरी आती है, तो सूरज को ढक देवे उसे छिपा देवे, इतनी छाबड़ी में कोई सूरज को छिपा सकता है कि नहीं छिपा सकता है। ऐसे सम्यक ज्ञान सूर्य को जिसने प्रकट किया वो छिपा नहीं रहता। पुण्य ने छुपे भभूत लगाया है कि नहीं? कोई सन्यासी होता है, बावा होता है, त्यागी होता है, उसका पुण्य छिपा रहता नहीं, ऐसी बात। जाति भी दी है, उसका परिचय करे, पहचान करने के दृष्टिकोण से परिचय करें, और नहीं समझ में आए ऐसी बात हो सकती नहीं, ये साफ बात है। ये हुआ 277 के ज्ञानी को भय होता नहीं, और अज्ञानी कितना भी सुखी हो क्या आम दाम और थाम क्या बोले कि परिवार का जूत बड़ा है, ठेकेदार बहुत है, पैसे बहुत है, सत्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको अनित्यता का भय सताए बिना रहेगा, मरण का भय है, एक्सीडेंट का भय है, रोग का भय है, चोरी का भय है, लूट का भय है, सब परलोक का भय है, सभी भय हमको होता ही है। कोई नो भय
नहीं,
ईश्वर मैंने अपना आत्मा है। 200 सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को, क्योंकि तो चक्रवर्ती दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते और सम्यक दृष्टि भी होते। 1/24 में यानी एक जो अवसर्पिणी काल होती है, अवसर्पिणी काल का चक्र है, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं, नव नारद वगैरह 64 सलाह का पुरुष है ना, वासुदेव प्रतिवासुदेव, इसमें 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो यहाँ भी 12 चक्रवर्ती हो गया। इसमें 2 चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि हुए, 10 तो सम्यक दृष्टि थे। यहाँ दृष्टांत लेना है सम्यक दृष्टि का, कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को लोग देखे कि यह 6 खंड वाला है, क्या है 6 खंड का धनी है, ये क्या दिखता है 6 खंड का धनी है, 6 खंड वाला, परंतु उसकी दृष्टि तो है अखंड पर है, 6 खंड पर उसकी दृष्टि नहीं होती, अखंड पर दृष्टि है। गुरुदेव को ये बात बहुत प्रिय लगती थी, देखिए सम्यक दृष्टि संकेत दृष्टि कैसे देखना चक्रवर्ती को, वो 6 खंड वाला है ऐसा देखना, या इसकी दृष्टि अखंड पर है वो देखना, क्या देखना, उसको 6 खंड छोड़ने में देर लगती नहीं। अज्ञानी को अपनी गुदड़ी झोपड़ी छोड़ी जाती नहीं, फटी हुई गुदड़ी नहीं छोड़ता वो, और सम्यक दृष्टि 6 खंड नाक में से निकाल दे ऐसे निकाल देता फैज मात्र में, बात खत्म, क्योंकि 6 खंड में भी वो भिन्न रहता है, क्या है 6 खंड में भी वो भिन्न रहता है, ऐसी व्यवस्था बनाता है वो, क्या कितना भी आरंभ परिग्रह हो अगर छूटने का उदय नहीं दिखने में आता है तो छोड़ने का लाख कोशिश करने पर भी छूटने का कोई अवसर नहीं दिखने में आवे, तो व्यवस्था ऐसी बिठाता है कि अपने को अपना आत्महित करने का समय अलग निकाल करके काम करने का समय होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कितना लंबा छोड़ा होगा, कितना होगा, यहाँ तो अपना हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको 15-15 घंटा काम करना पड़ता है, कितनी फाइलें आती हैं इनके पास, ये हिंदुस्तान तो एक खंड का भी कुछ अंश है, 6 खंड तो नहीं है लेकिन एक खंड का भी एक अंश है, तो इतना बड़ा जिसको राज होता होगा उसको कितना वहीवट कितना बड़ा होगा होता होगा, इतने मिनिस्टर हैं इनके पास, इतने खाते हैं अलग अलग, राज्यसभा के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इसके नीचे फौज सारे सचिव उप सचिव सारा सेक्रेटरियट, कितना एक एक खाता वाले के पास भी सारा सेक्रेटरियट, फिर भी प्राइम मिनिस्टर को 15 घंटा माथा खराब करना पड़ता है, चक्रवर्ती को नहीं, तो ज्ञान ध्यान में बैठ जाता है। क्या होता है वो अपना कमरे में जाता है तो ज्ञान ध्यान में बैठ जाता है कि बोलो किसी को मेरे साथ बात नहीं करना है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मेरी परमिशन के बिना किसको आना नहीं है, और राजकाज का कोई विकल्प नहीं रहता, क्यों कि मेरा है ही नहीं, मेरा ये पूर्व पुण्य का योग से हो गया है तो हो गया है, मेरे न कोई सुख का कारण है न दुख का कारण है, न कोई लेना है न कोई देना है, बात करता ध्यान में निर्विकल्प हो जाता है। भरत चक्रवर्ती का आता है ना भरतेश वैभव में, युद्ध की छावनी में शाम को 6 बजे सूर्यास्त में युद्ध बंद हुए, सारे दिन तो लड़ते रहे, शाम को अपने छावनी, छावनी में क्या उनको तो महल होता है, देव उनकी सहायता में है तो जहां भी उसका पड़ाव होता है लड़ाई का वहां वो महल बना देते हैं, फर्नीचर मनीचर सब देवी, लेकिन अपने कमरे में जाता है तो निर्विकल्प ध्यान में आरूढ़ हो जाता है, भगवान आत्मा के साथ केली करते हैं, निर्विकल्प आनंद में केली करते हैं, ऐसे होते हैं। बाह्य दृष्टि से देखे वो बहुत परिग्रह है, सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती को बहुत परिग्रह है, मनुष्य में चक्रवर्ती जितना किसी को भी परिग्रह होता नहीं। उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा, परिग्रह किसको कहे, मूर्छा परिग्रह, जो अपने संयोग में मूर्छित होता है कि ये मेरा है, अपनापना लगता है उसको परिग्रह है, जिसको मेरापना नहीं है उसको परिग्रह नहीं है, छेदावा भेदावा अन्य कोई ले जावा परिग्रह मारो नहीं, अरे ये सम्यक दृष्टि की भावना है। ताला लगाते हुए भी, दुकान को ताला लगाते हुए भी उसमें परिग्रह, उसको परिग्रह में ममत्व नहीं है। छोगानी जी को ये हुआ था, सोंगड़ाने का विचार किया, काफी साल से वो नहीं आ सके कलकत्ता से, और निर्णय भी किया कि अब तो थोड़े दिन में अपने को जाना है सत्संग में गुरुदेव के, अपने सर्वस्व के देने वाले श्री गुरु, क्या सर्वस्व के सर्व सुख के देने वाले इनके पास जाने का था, कितना उमंग होगा उसको, कितना उत्साह होगा। उसमें उनका जो एक नौकर था वो उघराणी की उगाही की रकम लेकर के थक गया, एक दिन आता है ना पत्र में आता है, अब क्या है कि पेमेंट तो करना पड़े, माल जिसको लिया है उसको पेमेंट तो करना पड़े, तो व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी, सारा बिजनेस बिगड़ जाएगा, और फिर विकल्प बढ़ जाएगा, तो परिस्थिति को संभालने का विकल्प आ गया, क्या हुआ विकल्प आ गया और अना नहीं हुआ, तो क्या देखा उसमें कि विकल्प किस में बढ़ेगा, मैं निकल जाऊंगा कलकत्ता से तो बढ़ेगा या रहूंगा तो बढ़ेगा, इस परिस्थिति में तो मुझे निकलना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे विकल्प बढ़ाना नहीं है, तो सत्संग में आते थे तो भी विकल्प छोड़ने के लिए, पर नहीं आए तो भी विकल्प शांत करने के लिए, ये बात है
अंदर की बात है,
अंदर की बात है, योग नहीं होता तो ऐसा बन जाता है, और जिसको योग होता है सालों तक वहां रहता है, सालों तक सुनता है, लेकिन ध्यान से सुनता तो ध्यान नहीं रहता, उपयोग भटकता रहता है, इधर उधर उपयोग भटकता रहता है। गुरुदेव तो कभी कभी टोकते थे लोगों को, उपयोग भटकना नहीं चाहिए, ऐसी चीज आ रही है, परमार्थ उपदेश निकल रहा है और उपयोग नहीं रह रहे, तो उनको दरकार सुनने की नहीं है। सुगानी जी ने ये लिखा, देखो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को लोग देखे कि यह छखंड वाला है, परंतु उसकी दृष्टि तो छखंड पर है ही नहीं, अखंड पर है, अपने आत्मा पर, अखंड आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस पर दृष्टि है। जैसे कोई अच्छी से अच्छी धर्मशाला हो, क्या बहुत साधन सगड़ हो, अपने घर में नहीं हो ऐसा, क्या फाइव स्टार होटल होती है कि नहीं, और किसी के यहाँ मेहमान बन के जावे तो अगला फाइव स्टार होटल में उतारा देवे, फिर वहां क्या दीवार को पेंट करने लगता है क्या, चित्र वित्र बनाता है क्या,
नहीं।
उसको पैर रखते ही पता है कि मैं दो चार दिन का यहाँ मेहमान, मेरा यहाँ से कोई सुधार करने से मुझे कोई काम की चीज नहीं रहने वाली, तो उसको अपनत्व नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, उपाधि नहीं है। और एक झोंपड़ी को भी ठीक करने जाता है कि मेरा घर है, तो उसको बहुत ममत्व और चिकना परिणाम हो जाता है, वो चिकना परिणाम से उनको नया बंद ऐसा होता है, जन्म मरण चालू हो जाता है। ये बात है, दृष्टि कहाँ है। तो चक्रवर्ती छह खंड को धर्मशाला समझते हैं, क्या ये चार दिन की भी चांदनी नहीं है, तो इसमें मुझे कोई सुख मिलने का कोई अवसर है, ये एक उपाधि का कारण है, एक उपाधि है, उसको भी मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं। परिणाम जितना आगे बढ़ता है तो छोड़ने का अवसर मिलता है, यही कारण।
आदि देव की मार्ग पर भगवान जय हो परम।